ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव को संबोधित किया, कहा विश्व 21वीं सदी के भारत की ओर बेहद उत्सुकता से देख रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा राजधानी में 15 वर्ष से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में NDMC फ्लावर फेस्टिवल 2025 का दौरा किया और दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की कार्यकुशलता और समयबद्धता में सुधार लाने के लिए सभी कर्मियों को वेतन मोबाइल ऐप अटेंडेंस के आधार पर तैयार करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व 21वीं सदी के भारत की ओर बेहद उत्सुकता से देख रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज NXT कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश के लिए वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकल फॉर ग्लोबल यानी वैश्विक उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बनाने की परिकल्पना की और ये अब वास्तविकता में बदल रही है।
कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही।
श्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व की नई फैक्ट्री बन रहा है और ये केवल कार्यबल नहीं बल्कि विश्व शक्ति बन रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पहले जिस सामान का आयात किया जाता था अब वो देश में ही निर्मित किया जा रहा है।
दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है।
दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में भाग लेने पहुंची ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में सीनियर लेक्चरर डॉक्टर एन लाइबर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के जनऔषधि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्था को देखा और उपस्थित कर्मचारियों तथा दवा खरीद रहे लोगों से बातचीत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनऔषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को उत्तम क्वालिटी की दवाइयां किफायती दरों पर मिल रही हैं।
Genosity is an amazing innovation. I think in terms of health, this is the most important, to have affordable medicines, to have a point where people can come in and have our treatment.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आज एक बजट पश्चात वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का सरकार का संकल्प बहुत स्पष्ट है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपए सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसमें सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है।
आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश का दलहन उत्पादन बढ़ा है, लेकिन घरेलू खपत का 20% अभी भी आयात पर निर्भर है, इसलिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया।
जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं। हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे।
इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि औषधि विभाग के माध्यम से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से आज हमने देश भर में 15,000 के करीब ऐसे स्टोर्स खोले हैं, जिसमें आज आम नागरिकों को न केवल किफायती बल्कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। 2047 के करीब दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उत्पाद आम जनता को बहुत ही कम दामों पर बाजार में जो ब्रांडेड दवाएं मिलती हैं उनसे यदि आप तुलना करें तो 70-80% कम दामों पर ये सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, जिससे जनता की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी में 15 वर्ष से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से ईंधन नहीं मिलेगा।
एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पता लगाने के लिए पेट्रोल पंप पर डिवाइस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक विशेष टीम बनाने जा रही है जो इन वाहनों को चिन्हित कर इन्हें शहर में प्रवेश से रोकने और पहले से मौजूद वाहनों को बाहर करने का कार्य करेगी।
15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी।
दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रस्तुत की गई सीएजी रिपोर्ट पर सत्ताधारी भाजपा आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर लगातार हमलावर है। आज मीडिया से बातचीत में सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने स्वास्थ्य मॉडल की खूब वाहवाही करती थी, पर इस रिपोर्ट ने उनके सभी दावों को खोखला साबित कर दिया है।
हम तो बार बार सीजी रिपोर्ट पटल पर आए और केजरीवाल साहब कहते थे हेल्थ स्कीम मेरी, विश्व इसको मान रहा है। आज अखबारों में जो आई है 14 अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड नहीं है, कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनकी हेल्थ पॉलिसी फेल रही है। केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता को मिसगाइड किया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मदर्स ऑन व्हील्स यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न पारिवारिक व्यवस्था को समझना और उनके सामाजिक कल्याण पर प्रभाव को गहराई से जानना है। मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लेने वाली सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल 2025 का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री सक्सेना ने कहा कि ये महोत्सव दिल्ली की समृद्ध पुष्प विविधता को बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये प्रकृति प्रेमियों को शहर की खिलती हुई भव्यता का जश्न मनाने के लिए साथ लाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव से ये पता चलता है कि दिल्ली फूलों का शहर बनने की राह पर है।
मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आने वाले समय में हम दिल्ली को जो फूलों का शहर बनाने का सपना है प्रधानमंत्री जी का भी, और मैं हम सब मिलजुट कर उसको करेंगे और आने वाले समय के अंदर आपको दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि वे इस महीने से अपने सभी कर्मचारियों का वेतन मोबाइल ऐप अटेंडेंस के आधार पर तैयार करेगा। निगम ने बताया कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता और समयबद्धता में सुधार लाना है। एमसीडी ने कहा कि कर्मचारियों को एमसीडी स्मार्ट मोबाइल ऐप पर दर्ज की गई उपस्थिति के अनुसार वेतन मिलेगा और जो कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे उन्हें केवल उन्हीं दिनों के लिए वेतन मिलेगा जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज शहर के आनंद पर्वत के एक निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र का आयोजन किया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस पहल में लगभग 57 विद्यार्थियों और 12 शिक्षकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य युवाओं को आवश्यक यातायात नियमों और जिम्मेदार सड़क व्यवहार के बारे में शिक्षित करना था। पुलिस ने बताया कि विद्यार्थियों को ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क का दौरा कराया गया जहां उन्हें ट्रैफिक सिग्नल, सड़क के संकेत और पैदल यात्री नियमों के बारे में अवगत कराया गया। दिल्ली पुलिस ने जनता की सुगमता के लिए आज उत्तर पूर्वी जिले के सभी थानों में जन सुनवाई का आयोजन किया। पुलिस के अनुसार इस मौके पर उच्च अधिकारियों द्वारा जिले के सभी थानों में जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया गया। पुलिस ने बताया कि जिले के सभी थानों में कुल 185 शिकायतें मिली जिनमें से 125 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और बाकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि राज्य में कल होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक, पारदर्शी तथा निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि कल 7 नगर निगमों गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के महापौर तथा सभी वार्ड के सदस्यों के लिए मतदान होगा। अम्बाला और सोनीपत के महापौर उपचुनाव के लिए भी कल मत डाले जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में सुगम्य यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के विकास और उत्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने 8 मार्च से राज्य के सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने ये निर्देश दिए। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कहा, विश्व 21वीं सदी के भारत की ओर बेहद उत्सुकता से देख रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली में 15 वर्ष से पुराने वाहन को 1 अप्रैल से ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में NDMC फ्लावर फेस्टिवल 2025 का दौरा किया और दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की कार्यकुशलता और समयबद्धता में सुधार लाने के लिए सभी कर्मियों का वेतन मोबाइल ऐप अटेंडेंस के आधार पर तैयार करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।